का था, रूप वही रूप नया।
रामनाथ ने आज निश्चय कर लिया था, अब वो नहीं रुकेगा, वो अवश्य चला जाएगा। लेकिन रजनी, नाम याद आते ही उसका निश्चय डगमगाने लगा और वो क्रुद्ध हो उठा। ये कैसी मोह जड़ता है, जो जीवन भर मौत से जूझता रहा, जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जीवन की थाह लेना चाहता है, वो एक नारी के कारण अपनत्व को खोता जा रहा है। छी, ये तो निरी कायरता है। मानता हूं रजनी का कोई स्वार्थ नहीं है, वो सहज सहानुभूति के कारण मेरे प्रति करुण है, परंतु करुणा और सहानुभूति के जीवन के गुण हैं, ये तो जीवन के भार हैं। उसी समय दरवाजे पर खड़खड़ाहट हुई। उसने सहज स्वर में कहा, कौन? मैं। रजनी? वो चौंक कर उठा। देखा, बढ़ई की असावधानी के कारण किवाड़ों में जो छिद्र रह गए हैं, उन्हीं में से होकर धवल प्रकाश की किरणें जाने कब की चुपचाप अंदर आ गई हैं। बाहर शांति को भंग करता हुआ धीमा कोलाहल फूट पड़ा। नीचे शहर के शौकीन बाबुओं की पदचाप बार बार आकर दूर चली जाती थी। उसने किवाड़ खोले, बदन में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। रजनी ने आकर चाय का गिलास और नाश्ते की प्लेट मेज पर रख दी और लौट चली। रामनाथ ने एक बार प्लेट को देखा और फिर रजनी को, बोला, बेटी सुनो। जी? मैं आज जाऊंगा। जी, और अरे नहीं नहीं, मैं अब और नहीं रुक सकता। आप तो रोज ही ऐसा कहते हैं। रामनाथ सहसा कुंठित हो उठे, बोले, नहीं, परंतु आज रोज की बात नहीं है, आज मैं जाना चाहता हूँ। रजनी मुड़ी, जाना चाहेंगे तो मैं रोकूंगी नहीं, कौन किसको रोक सका है। फिर भी क्या, यही कि यहाँ आपको क्या कष्ट है जिसको सहन करने में आप असमर्थ हैं और भाग जाने को आतुर हैं। अनमनस्क रामनाथ फिर झिझके, लेकिन दूसरे ही क्षण एक विचार उनके मस्तिष्क में उमड़ गया। वे बोले, जिन्हें तुम कष्ट कहती हो, उन्हीं के बीच पलकर मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, उन्हीं का अभाव मुझे यहाँ खटकता है। लगता है कुछ यहाँ है, वो एक षड्यंत्र है, इतना गहरा जितना मकड़ी का जाला, परंतु मैं मक्खी नहीं बनना चाहता। रजनी ने सुन लिया, सोचने लगी, इनकी बात पर हंसूं या गुस्सा करूं। दुनिया दुख से दूर भागती है, ये दुखों की गोद में जाने के लिए आतुर है, कैसा आदमी है ये। और वो बिना कुछ कहे नीचे लौट गई। रामनाथ कुर्सी पर बैठकर यंत्र चालित की भांति चाय पीने लगे, पीते पीते सोचने भी लगे। मनुष्य बहुधा जानबूझकर नहीं सोचता, विचार आप ही आप आकाश में बादलों की भांति मस्तिष्क में उमड़ आते हैं। बादल सभी सजल होते हैं, जल के बिना बादल बादल नहीं होता। फिर भी एक धरती की छाती ठंडी करता है, दूसरा व्यर्थ ही सूरज की धूप और चांद की चांदनी को रोकता है। इसी प्रकार विचार हैं, कुछ के कारण मनुष्य स्वयं आगे बढ़ता है और संसार भी, पर कुछ अड़ियल घोड़े की तरह गाड़ी को पीछे धकेलते रहते हैं। रामनाथ के मन में जो विचार अब उठ रहे हैं, वो अड़ियल घोड़े के समान हैं। वो कभी का निश्चय कर चुके थे कि उन्हें जाना है, परंतु कब ये नहीं जान पाते थे। जाने का प्रतीक्षण आने पर देखते, किसी ने आकर सामने रास्ता रोक लिया है, रोकने वाले में शक्ति है ये बात नहीं है, और शक्ति हो भी तो क्या वो ब्रिटिश सरकार से अधिक हो सकती है। पूरे 30 वर्ष से इस शक्तिशाली सरकार से लोहा ले रहे हैं, जीवन का कोई भी मोह, कोई भी कष्ट उन्हें त्रस्त नहीं कर सका। वो सदा नदी की तरह आगे बढ़ते रहे, जिसने प्रवाह को रोका वो खुद ही तहस नहस हो गया। लेकिन तभी न जाने किसने आकर उनके कान में फुसफुसाया, तुम जाना नहीं चाहते, नहीं तो जाने वाले को किसने रोका है। वो चिल्ला उठे, ये गलत है, मैं जाना चाहता हूं। ठीक उसी समय निशिकांत बाहर से लौट आए और देखकर बोले, दादा चाय नहीं पी अभी तक? रामनाथ चौंके, पी रहा हूं। हाँ खूब पी रहे हो दादा, अभी से आंखें धोखा देंगी ऐसी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता। देखता हूं प्लेट में काजू और बादाम सब ऐसे ही पड़े हैं, चाय ठंडी होकर काली हो गई है। अचरज? रामनाथ का चेहरा कुछ खिंच चला, बोले, जो तुम देख रहे हो वो ठीक है, मुझे मेवा खाने की आदत नहीं है। तब मैं यहां से जाना चाहता हूं। निशिकांत मुस्कुराया। कहां जाएंगे आप? इतना बड़ा संसार क्या नष्ट हो गया है? इसी में पलकर मैं इतना बड़ा हुआ हूं। अरे संसार में सभी पलते हैं दादा, परंतु सभी को तो पुलिस आवारागर्दी में गिरफ्तार नहीं करती ना। अपने विरोधियों को सभी लांछित करना चाहते हैं, फिर यदि सरकार मेरे विद्रोह को गुंडागिरी बताती है तो अचरज क्या है? परंतु उनके कहने से मैं क्या आवारा हो जाऊंगा? वो तो मैं नहीं हो सकता।
अरे नहीं हो सकते
तो फिर?
फिर यही दादा, इन वर्षों में दुनिया ने कितनी प्रगति कर ली है ये आप भूल जाते हैं।
विद्रूप से रामनाथ मुस्कुराए। प्रगति? जिसने लोहार के घर बजाए हैं वो सुनार की खटखट को प्रगति कैसे मान सकता है? मुझे राजनीतिक पार्टीबाजियों में विश्वास नहीं है। राजनीति का आरंभ आजादी के बाद होता है। गुलामों की एक ही पार्टी है विद्रोही, एक ही धर्म है बगावत। मैं क्रांति चाहता हूं और क्रांति रक्त मांगती है, सिद्धांत नहीं। कहते कहते रामनाथ तीव्र होने लगे, उनकी आंखें आरक्त हो उठी, नसों में रक्त संचार हो गया। उन्होंने तीव्रता से कहा, निशिकांत मैं आज अवश्य जाऊंगा।
निशिकांत ने धीरे से कहा, आज ही जाइएगा?
हां आज ही।
कहां का टिकट लाऊं?
टिकट? मैं टिकट नहीं ले सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैदल जाऊंगा।
निशिकांत ने गंभीर होकर कहा, दादा आप तूफान की तरह सोचते हैं, परंतु तूफान नाश का प्रतीक है, निर्माण का नहीं।
ठीक है, मैं नाश चाहता हूं, निर्माण नाश के बाद होता है, पहले नहीं। निशिकांत ने फिर कुछ नहीं कहा।
कहे भी क्या, जहां विचारों में विषमता है वहां तर्क है, और तर्क का कोई अंत नहीं होता।
और फिर न जाने क्यों इस व्यक्ति से तर्क करते उन्हें दुख होता है।
रजनी की हालत और भी विचित्र है, उसका कारण है।
7 दिन पहले की बात है, रात गहरी होती आ रही थी और रजनी निशिकांत की बाट देखती रसोई में बैठी थी। तभी पैरों की चाप उसने सुनी। वो लौट आए हैं, पर ये क्या, वो अकेले तो नहीं जान पड़ते। सोचने लगी, इतनी रात को कौन आया? तभी निशिकांत ने आकर कहा, रजनी खाना रखा है क्या?
नहीं तो क्यों?
मेरे साथ एक आदमी है,
बना दूं?
हाँ हाँ बना दो, बेचारे भूखे हैं, अभी बनाती हूं। और खाना खिलाते समय उस आदमी को देखकर रजनी चौंक उठी। ऐसे खाता है जैसे कभी इंसानों में नहीं रहा। कपड़े फटे हैं, आंखों में वहशीपन टपकता है, बोलता है तो मानो लड़ता है। कौन है ये?
रजनी ने एकांत पाकर निशिकांत से पूछा।
एक क्रांतिकारी।
कांग्रेसी?
नहीं रजनी, कांग्रेसी नहीं है, बहुत पुराना विद्रोही है, 30 वर्ष से लगभग जेल में ही रहा है।
रजनी कांप उठी।
30 वर्ष जेल में?
हाँ रजनी, सरकार छोड़ना ही नहीं चाहती। एक बार भागकर विदेश घूम आया, फिर पकड़ा गया। कांग्रेस राज्य के समय छूट गया था, परंतु उसके समाप्त होते ही फिर जेल में बुला लिया गया।
रजनी करुणा से भर उठी। बेचारे के घर वाले क्या कहते होंगे?
निशिकांत मुस्कुराया। यही अच्छा है कि उसके घर वाले नहीं हैं।
नहीं हैं? क्या कहते हो? आखिर माँ बाप स्त्री?
ना रजनी, कोई भी नहीं है। पहली बार जब उसने बगावत की तो केवल 20 वर्ष का था। पिता एक सरकारी दफ्तर में हेड क्लर्क थे, सुना तो बेटे को त्याग दिया। आज किसे दिन नहीं थे, बगावत का नाम मौत था। हाँ माँ बहुत रोई चिल्लाई, समझाया, एक बार पकड़कर घर भी ले गई, पर ये मौका पाकर फिर निकल भागे। सुना कि उसके बाद माँ बाप में कहा सुनी हो गई, माँ ने अनशन करके प्राण त्याग दिए।
हाय!
और माँ के प्राण त्याग की बात सुनकर ये अत्यंत प्रसन्न हुए कि इन्हें मुक्ति मिली। रजनी नारी थी, छाती में दरार पैदा हो गई। उसी से होकर करुणा और सहानुभूति का अजस्र प्रवाह बहने लगा।
रात को सोने के लिए उसने नया बिछौना, नई चादर, नया तकिया निकाला। ऐसे बिछाने लगी जैसे अपने प्यारे बच्चे को सुलाना चाहती हो। अभी उसकी गोद नहीं भरी थी, पर अनजाने ही अज्ञात शिशु उसकी छाती को घेरे पड़ा था। उसी में आकर अनायास ही इस बूढ़े बालक ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया, तो उसे तनिक भी दुख नहीं हुआ। उल्टे वो एक अज्ञात गौरव से भर उठी। उसने अपने पति से कहा, देश के लिए इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, ऐसे ही तपस्वियों के बल पर तो भारत आजाद होगा। निशिकांत बोले, सो तो है ही, पर ये अब जाएंगे कहाँ? कुछ पता नहीं, आपको कैसे मिले? शायद कहीं मेरा नाम सुना होगा तो पूछते पूछते चले आए। और कोई नहीं जानते इन्हें? निशिकांत फिर मुस्कुराए। दुनिया सदा ऊंचा सुनती है रजनी, जो शोर नहीं मचा सकते उनकी वो बात नहीं सुन पाती। और तुम जानती हो, शोर मचाना भी एक कला है जो इनको नहीं आती। ठीक है जी, जो चुपचाप काम करते हैं उन्हें कोई नहीं पूछता। पर रजनी, एक बात और है, सदा जेल में रहे हैं, जनता से कभी वास्ता नहीं पड़ा, इस बीच संसार कहीं से कहीं पहुंच गया, इनके विचार साधन सभी पुराने हो गए हैं, दुनिया उन्हें भूल गई है, इसलिए भी इनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। रजनी को नींद आ रही थी, सुनते सुनते वो सो गई, परंतु अचानक ही जिस व्यक्ति ने उसके वात्सल्य को जगा दिया था, वो स्वप्न में भी उसका पीछा न छोड़ सका। देर तक उसी को लेकर उसका मन खिलवाड़ करता रहा। इस बीच अचानक उसकी आंख खुल गई तो देखा चारों ओर अंधकार है, सन्नाटा है। केवल निशिकांत कभी कभी कुनमुन कर उठते हैं, कभी कभी कुत्ते भौंकते हैं, परंतु ये कैसा शब्द है? कोई धीरे धीरे रह रहकर सुबह उठता है। वो भय से कांपने लगी, कौन रोता है ऐसे? पर शब्द दूर नहीं था। शांत होकर उसने सुना, बराबर के कमरे में। बराबर के कमरे में तो वो सोए हैं, तो क्या? वो उठी, शीघ्रता से निशिकांत को झकझोरा, सुनिए सुनिए। निशिकांत नींद में गुर्राए, क्या है? अच्छी सुनिए तो। चौंक कर उठा, अंधेरे में आंखें फाड़कर बोला, कौन कौन? अरे मैं, रजनी, क्यों, क्या हुआ? अजी वो रो रहे हैं। रो रहे हैं? कौन रो रहे हैं? अरे वो रामनाथ बाबू जी। निशिकांत की नींद दूर हो गई। लालटेन जलाकर उसने पूछा, क्या बात है? रजनी बोली, कुछ पता नहीं, शायद बीमार हो, तो देखूं जाकर? हाँ देखना तो चाहिए। निशिकांत उठा, किवाड़ खोले, रोने का स्वर अब भी आ रहा था, क्षण क्षण में कोई सुबह उठता था। अचरज से भरकर निशिकांत कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर उसने साहस करके किवाड़ थपथपाए। अंदर एकदम शांति छा गई थी। रामनाथ बाबू? कोई नहीं बोला। रामनाथ बाबू? अब वो बोले, जी। स्वर संयत था, किवाड़ खोलकर पूछा, क्या बात है? निशिकांत झिझका, फिर बोला, सोते सोते वो चौंक पड़ी, ऐसा मालूम होता है कि कोई रोया है। रोया? कौन? यही तो देखना है। अंधेरे में क्या भाव चेहरे पर आए कुछ पता नहीं लगा, लेकिन कहा उन्होंने यही, हो सकता है कोई पास के मकान में रो रहा हो, शायद। पर उसे ऐसा भ्रम हुआ जैसे आप। वो जोर से हंस पड़े। मैं? अरे मैं क्यों रोऊंगा निशिकांत बाबू, मैं तो गहरी नींद में सो रहा था। आपकी पत्नी को भ्रम हुआ है। शायद। वे हतबुद्धि लौटने लगे, क्षमा करिए, आपको व्यर्थ जगाया। वो उसी तरह बोले, अरे कोई बात नहीं, केवल गलतफहमी के कारण ही ऐसा हुआ है। और बात वहीं समाप्त हो गई। निशिकांत ने सोचा, अपने को छिपाने की कला में आदमी कितना अभ्यस्त हो गया है ना। रजनी ने सोचा, ये लोग भी झूठ बोलते हैं, छल और झूठ, हाय रे भाग्य, आदमी इनसे कभी भी नहीं बच सका, स्वर्ग में उनका अभाव नहीं है। मेरी पीड़ा प्रकट ना हो, ये यत्न करने में छल और झूठ अनायास ही पुण्यात्मा के अस्त्र बन जाते हैं। कैसी घोर विडंबना है। पर रजनी अब भी सोचती है कि ये रोए क्यों। परंतु इससे बढ़कर एक अचरज रजनी को उस दिन हुआ जब रामनाथ बाबू ने स्वयं स्वीकार किया कि वो रोए थे। तब तक उनका अजनबीपन दूर हो चुका था और इस दंपत्ति के अपनत्व के सामने वो झुकते जा रहे थे। तब वो धूप में बैठे रजनी को अपने बीते जीवन के संस्मरण सुनाने लगे। अवस्था की दृष्टि से रजनी को बेटी कहते थे। मां की बात सुनाते सुनाते अचानक बीच में बोल उठे, उस रात बेटी मैं सचमुच रोया था। रजनी बोली, जी मैं जानती हूं, सोचा होगा कैसे पागल हैं। नहीं नहीं पागल नहीं, झूठा। रामनाथ खुलकर हंसे, सचमुच मैंने झूठ बोला था। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कायरता स्वीकार नहीं करना चाहता था। कायरता? हां बेटी, रोने वाले कायर होते हैं। पर आप रोए क्यों थे? मां की याद आ गई थी बेटी, बचपन में वो इसी तरह मेरे लिए साफ बिस्तर बिछाया करती थी। चादर पर एक भी दाग लग जाता तो मैं उसे फेंक देता था। याद नहीं पड़ता कभी तकिए का एक दूसरा गिलाफ दूसरी रात मेरे तकिए पर रहा हो। 30 वर्ष पहले के वे दिन उस रात मेरे सामने आ खड़े हुए। ऐसा लगा मानो माँ ने बिस्तर बिछाकर पुकारा हो, रामू सोएगा नहीं रे, सवेरे कॉलेज जाना है। उस जमाने की बात। कॉलेज जाना श्री वृद्धि और ऐश्वर्य का मुक्त द्वार था। यही आशा लगाकर मेरे माँ बाप ने मुझे कॉलेज भेजा था। इसी आशा पर उनका प्यार दुलार मुक्त होकर बह रहा था। पर हाय रे भाग्य, एक दिन चुपके से आकर बेमाता ने मेरे माँ बाप का स्वप्न भंग कर दिया। उनका बेटा इंडियन सिविल सर्विस में न जाकर भारत माँ की सेवा में जा पहुंचा। शब्द के अर्थ में कोई भेद नहीं था, भेद था केवल अर्थ की प्राप्ति में। इस प्राप्ति के प्रश्न को लेकर मेरे जीवन की दिशा ही पलट गई। पिता ने देखा तो क्रुद्ध हो उठे, बोले तूने मेरी नाक काटी है, मैं तेरा मुंह ही नहीं देखना चाहता। मैंने कहा, पिताजी आपकी नाक जहां है वहीं रहेगी, पर अपना मुंह दिखाने के लिए मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगा। मेरी मां कांप उठी थी, क्या कहता है तू, पिता की प्रतिष्ठा धूल में मिलाना ही आजकल की संतान का पेशा है क्या? मैंने कहा था, मां पिता की प्रतिष्ठा धूल में मिलाकर भी मैं देश की प्रतिष्ठा बचा सका तो सौदा सस्ता ही होगा। मां नहीं समझी थी, रो पड़ी। न जाने हिंदुस्तानी मां के ये आंसू कब रुकेंगे। जिस दिन रुकेंगे उसी दिन भारत आजाद होगा, उससे पहले नहीं। उस रात मैंने वे आंसू फिर देखे। लक्ष्मण की रेखा के समान इन्हीं आंसुओं की लाग देकर मां मुझे बांधना चाहती थी पर बांध न सकी। रावण का नाश जो होना था। पर बेटी उस दिन और आज के दिन में एक अंतर है। तब मेरी धमनियों का रक्त जितना गर्म था आज उतना नहीं है। उत्साह होकर भी उसका आधार स्तंभ ढीला पड़ गया है। न जाने क्यों अपने को निर्बल महसूस करता हूं। जेल लांघकर मैंने देश छाना है, वर्षों अधिकारियों के लिए भूत बनकर उनकी नींद हराम की है, पर आज। सहसा रामनाथ उद्विग्न हो उठे, आंखें आरक्त हो आईं, मुख तमतमा गया। नहीं नहीं, मैं अब भी सशक्त हूं, मेरा ध्येय मुझे भूला नहीं है, मैं मोह जाल में फंसकर कायर नहीं बन सकता। रजनी चौंकी, कुछ दुखी भी हुई, बोली आपको दुख हुआ हो तो क्षमा कर दीजिए, आप तो देश के गौरव हैं, भले ही आपका नाम कोई ना जानता हो, आपको रोक रखने की हम लोगों की कतई इच्छा नहीं है। रामनाथ को अपनी गलती महसूस हुई, लज्जित हो उठे, बोले अरे नहीं बेटी, गलती तो मेरी है, सड़क का भिखारी ऐश्वर्य की गोद में रोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। आशा से अधिक अगर किसी को मिल जाता है ना तो वो मस्तिष्क का संतुलन खो बैठता है। जो स्नेह स्वप्न बन गया था वही जब साकार होकर सामने आ गया तो मैं कायर बन चला। पर बेटी अब मैं जाना चाहता हूं। रजनी बोली, विश्वास रखिए हम आपको बांधना नहीं चाहते, परंतु इस प्रकार भी क्या जीवन बिताया जा सकता है? अराजकता के दिन अब नहीं है, कुछ दिन तो हम लोगों के पास रहिए, देश आपका है, आप किसी पर भार बनने की बात क्यों सोचते हैं?
रामनाथ द्रवित होने लगे।
कहा, रजनी बेटी, तुम्हें देखकर माँ की याद आ जाती है। ऐसा लगता है तुम्हारे रूप में माँ जन्म लेकर फिर से मेरी देखभाल करने के लिए आ गई हैं। ऐसा नहीं होता तो कैसे उस रात को मैं निशिकांत को ढूंढ पाता? उनके लेख पढ़े थे, लगा आदमी विस्तृत है इसलिए चला आया। देखता हूँ उस विस्तृत आकाश के अतिरिक्त यहाँ विशाल धरती भी है। इसी आकाश और धरती के मिलन की छाया के नीचे जीवन संध्या के कुछ दिन बिता सकने का लोभ मुझे बार बार आता रहता है। रजनी मुस्कुराई, तो उस लोभ को त्यागिए नहीं, कुछ दिन यहां जरूर रहिए। रामनाथ फिर असमंजस में पड़ गए, कुछ क्षण सोचते रहे और फिर बोले, देखता हूं ये लोभ त्यागा नहीं जा सकेगा, मैं भाग नहीं सकूंगा। रजनी गदगद हो उठी, जैसे मन चाहा वर मिला हो। निशिकांत के लौटते ही उसने कहा, सुनिए ये अब यहीं रहेंगे। सच? हाँ, आज उन्होंने पहली बार स्वीकार किया कि वो रहना चाहते हैं। निशिकांत प्रसन्न हुआ, बोला, ये तो शुभ है रजनी, कुछ दिन यहां टिककर रहेंगे तो जीवन पर विचार करने का अवसर मिलेगा। जी, पर आप उनके लिए कुछ कपड़ों का प्रबंध कर दीजिए ना, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। और भी जरूरी चीजें? हाँ हाँ, जरूर करूंगा, आते समय भंडार से कपड़ा लेता आऊंगा। और देखिए, ये पढ़े लिखे आदमी हैं, चाहे तो ट्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि स्वाभिमानी आदमी दूसरे का अन्न खाना ठीक नहीं समझते। इनको ऐसा महसूस नहीं होने देना चाहिए कि ये हम लोगों पर निर्भर हैं। निशिकांत प्रभावित होकर बोले, रजनी, बात तो तुमने पते की कही है, मैं अवश्य इसका भी प्रबंध करूंगा। और सचमुच अगले दिन निशिकांत जब दफ्तर से लौटे तो बहुत सा कपड़ा और कुछ अन्य जरूरी सामान बगल में दाबे हुए थे। आकर बोले, लो भाई, दादा का सामान ले आया हूं, कहाँ है वो दर्जी बेबी, आता ही होगा। रजनी देखकर हंसी, ले आए, बड़ा अच्छा किया, दादा ऊपर बैठे होंगे, आज तमाम दिन बड़े प्रसन्न थे, कहते थे। इसी बीच निशिकांत ऊपर चले गए, रजनी सामान संभालने लगी, लेकिन उसी क्षण ऊपर से निशिकांत ने पुकारा, अरे भाई तो यहां पर नहीं है। रजनी चौंकी, नहीं है, वहीं तो थे, बाजार तो नहीं गए, मुझसे तो नहीं कहा, मैं जब आई थी तब तो पढ़ रहे थे। और कहती कहती वो भी ऊपर चली गई। देखा कमरा सूना पड़ा है, किताब उल्टी रखी है, सब सामान यथास्थान है, केवल उनके पहनने की धोती अरगनी पर नहीं है। मन कैसा चोर है, क्षण भर में सब कुछ देख डाला। बोली, कहाँ गए, बिना कहे तो वो हिलते भी नहीं है, हो सकता है तुमने सुना ना हो, शायद, तो अभी आ जाएंगे, आप दर्जी से कह दीजिए कि। तभी उसकी दृष्टि पलंग पर पड़ी, तकिए के नीचे कागज रखा था, झपट कर उसने उठा लिया। रामनाथ ने उसमें लिखा था, तुम लोगों ने मुझ पर जो अपने निष्पाप हृदय का स्नेह उड़ेला है, उसका बदला सहस्र जन्म लेने पर भी चुकाना असंभव है। सोचा था जीवन के अंतिम दिन तुम लोगों के स्नेहवट की छाया में बिता दूं, पर मनुष्य का सोचना क्या स्वतंत्र है? बंदिनी मां की मुक्ति के लिए जन्मदात्री का वध मैं कर चुका हूं। सोचता हूं किसी दिन तुम लोगों के प्रति भी मुझे कृतज्ञ न बनना पड़े, इसीलिए आज जा रहा हूं। विश्वास रखिए, मैं जीवन में विश्वास रखता हूं, मरते दम तक जीऊंगा। हां, एक बात तुमसे कहता हूं, प्रेम का जो स्फटिक सोता तुम लोगों के हृदय में बहता है, उसे कभी न सूखने देना, सारा संसार उसी का प्यासा है। मैं भाग्यशाली था जो उस सोते का पानी पी सका, अकेला ही सारा पी जाऊं, इतना स्वार्थी मैं नहीं होना चाहता। तुम लोगों का रामनाथ। पढ़ लिया तो कागज हाथ से छूटकर गिर पड़ा। बस।